पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय।
आपको मालूम है कि हम किस तरह से सीरीज में चल रहे हैं क्रम में। पिछले संडे हमने पहला तिमोथी उसके 3 अध्याय पर अध्ययन किया था, विचार किया था। लास्ट संडे वी सॉ फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3। नाउ टुडेस आवर पोर्शन इज फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्सेस फ्रॉम 1 to 16। पहले मैं इसको कुछ पदों को पढ़ूंगा। आई विल रीड फ्यू वर्सेस चैप्टर 4 वर्सेस 1 फ्रॉम 1 to 5। परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के लिए विश्वास से भटक जाएंगे। ऐसे उन झूठे लोगों के पाखंड के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते लोहे से दागा गया है, जो विवाह न करने और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की शिक्षा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले धन्यवाद के साथ खाएं। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो सब अच्छा है, कुछ भी अस्वीकार करने योग्य नहीं। यदि उसको धन्यवाद के साथ खाया जाए, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा शुद्ध हो जाता है। अभी मैं केवल 5 पद पढ़ रहा हूं, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे और जहां तक जा पाएंगे जाएंगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, इफ यू डोंट हैव बाइबल विद यू, खासतौर से हिंदी में, आपके पास जो लोग आए हैं, अगर नया नियम नहीं है, आप हाथ दिखा सकते हैं, आपके पास बाइबल पहुंच सकती है ताकि आप इसमें से पढ़ सकें। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय। जब पिछली बार हमने संडे को हमने समाप्त किया था, तो हमने देखा था चैप्टर 3 वर्स 16 में सुषमाचार क्या है, और सुषमाचार को हमने देखा था यीशु मसीह सुषमाचार है, और 16 पद में बहुत ही अच्छी रीति से वो 6 बातों के द्वारा सुषमाचार को समझाया गया है, जिसको हम देखते हैं। परमेश्वर का कार्य बढ़ रहा था, कलीसिया स्थापित हो चुकी थी। इफिसस में तिमोथियुस वहां पर एक पास्टर के रूप में सेवा कर रहा था, और न केवल इतना है, लेकिन उसके साथ साथ एक और है कि वहां पर लीडरशिप की प्रॉब्लम है, कि जो एक अच्छा अगुवापन होना चाहिए वहां भी वो समस्या है। और उन्हीं सब बातों को लेकर के कि किस प्रकार के अगुए होने चाहिए कलीसिया में, पास्टर एल्डर्स डीकन कैसे होने चाहिए, कि झूठे शिक्षकों का सामना एवं कलीसिया का बचाव, प्रोटेक्ट द चर्च फ्रॉम फॉल्स टीचर, ये बहुत जरूरी है, प्रोटेक्ट द चर्च फ्रॉम फॉल्स टीचर। और आज भी कलीसिया को यह बचना है झूठे शिक्षकों से, और जब तक हम झूठे शिक्षकों के बारे में ना जाने, ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सरलता से अपनी ओर लोगों को खींच लेते हैं, आकर्षित करते हैं, इजली दे अट्रैक्ट पीपल टू देमसेल्फ। और हमें बहुत अधिक सावधान रहना है, और पौलुस इसीलिए बार बार इस चीज को दोहराता है, और वो कहना चाहता है कि हमें परमेश्वर के सुसमाचार को समझना है, हमें परमेश्वर के सुसमाचार को जाना है, हमें परमेश्वर के ना केवल सुसमाचार को लेकिन जो सही शिक्षा है उसको हमें समझना है, और उस बातों को लिखते हुए। और तब जब 16 पद में खत्म करता है तो कहता है क्या है सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह जो संसार में देह धारण करके आएगा, आ गया, उसके इनकॉर्पोरेशन के बारे में है, वो आत्मा द्वारा धर्मी ठहरा प्रमाणित हुआ, सरदूतों को दिखाई दिया, गैर यहूदियों में प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया, महिमा में ऊपर उठा लिया गया। और हमने पिछले दिनों में इस बात को देखा था प्रेरित काम में किस तरीके से सारी चीजों का वर्णन है। अब जब ये सारी चीज करा है, तब 4 अध्याय को शुरू करता है एक शब्द से, परंतु। ये सच है, सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, आत्मा स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में क्या होगा, एंड टाइम में क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या अंतिम समय अब शुरू हुआ है, द एंड टाइम क्या आज शुरू हुआ है, इज स्टार्टेड नाउ, कब लिखा गया, पॉलस कब लिख रहा है, आज से 2000 साल पहले लगभग, उस समय से। परमेश्वर के वचन को हम इस बात को देखें, झूठे शिक्षक और झूठी शिक्षाएं और झूठे धर्म और झूठी चीज पैरेलली परमेश्वर के साथ की कार्य के साथ साथ चलता रहा। एक और हम परमेश्वर के कार्य को देखते हैं, आजकल हम मॉर्निंग डिवोशन में व्यवस्था विवरण को अध्ययन कर रहे हैं, और हम उस समय भी देख रहे थे कि किस तरह से परमेश्वर ने इसराइलियों को निकाला, निकालने के साथ साथ इसराइलियों को परमेश्वर आगे ले जा रहा है, बार बार शिक्षा दे रहा है, बार बार आज्ञा दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि झूठी शिक्षाएं उनको पकड़ ले रही है, और वो झूठी आराधना में, फॉल्स वर्शिप में वो चले जा रहे हैं, लोग खींचे जा रहे हैं। और आज भी मुझे और आपको इस बात का सामना करना पड़ता है।
जब हम इस बात को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन इस चीज को आगे बढ़ते हुए पौलुस कुछ बातों कहना चाहता है। जो पहले पद से लेकर पांच पद तक है पौलुस कहता है, इससे पहली बात जो कहना चाहता है, डेंजर फॉर द टीचिंग ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन। डेंजर, हमें उस भयंकर बात से बचना है, सावधान रहना है जो हमारे सामने इस खतरनाक फॉल्स टीचिंग की डॉक्ट्रिन को हमें ला करके सच्ची डॉक्ट्रिन को खत्म कर दे रहा है, सच्ची शिक्षा को खत्म कर दे रहा है। मेरे प्रियो, हम कलीसिया में हैं। कलीसिया में आना केवल वर्शिप करना काफी नहीं, आराधना करना काफी नहीं है, वचन की सच्चाइयों को जानना बहुत जरूरी है। और बार 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 इस बात को हम संघर्ष करते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, नहीं समझते, और हम वही करते हैं जो संसार करता है। और मेरा हृदय इस बात से दुखी होता है, हम वही करते हैं जो संसार करता है। एक सच्ची शिक्षा को पाने वाला व्यक्ति, उसका जीवन, उसके निर्णय, उसके कार्य अलग रहेंगे। और मैं कुछ व्यवहारिक बातों को आपके सामने आज लाऊंगा। पौलुस जरूर इस बात को कुछ कुछ कह रहा है। यहां क्या कह रहा है, दो चीजें हैं वो उस समय वो लोगों को भ्रमित कर रहे थे, दो चीजें भ्रमित। वो क्या कह रहा है, अंतिम समय में कुछ भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाएंगे के कारण क्या करेंगे, विश्वास से भटक जाएंगे। और पौलुस तीमोथियुस को लिखते हुए बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, भटकना भटकना भटकना, बार बार कह रहा है वो भटक जाएंगे भटक जाएंगे। एक का छह पद है, पांच का पंद्रह पद है, अभी इस पद को भी देखा, चार का पहला पद है, एक का छह पद, चार का पहला पद, पांच का पंद्रह पद, छह का दस पद, छह का इक्कीस पद, करीब पांच छह बार वो इस बात का वर्णन करता है, वो भटक जाएंगे भटक जाएंगे भटक जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मुझे और आपको बहुत अधिक सावधान रहना है, मुझे और आपको बहुत अधिक सचेत रहना है कि ऐसा ना हो कि हम विश्वास करने के बाद भी भटक जाएं। इस बात को गंभीरता से लेना है। हम सोचते तो हैं कि हमने विश्वास किया, हम सोचते तो हम विश्वासी हैं लेकिन फिर भी हम भटक जा रहे हैं। और पौलुस इसी चीज के बारे में चिंतित था। और सच में आज एक कलीसिया में एक सच्चे सेवकों की, अच्छे सेवकों की चिंता होनी है। और तो वो कह रहा है किस चीज में, वो कह रहा है भटक जाए। और वो उन लोगों को कैसे बोलता है, क्या बोलता है सेकंड वर्स टू में, दूसरे पद में, और उन झूठे लोगों के पाखंड के कारण, हिपोक्रेट बोलता है उनको, उन झूठे लोग। ये कौन लोग, शिक्षा दे रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आश्चर्य कम कर रहे हैं, बहुत लोगों लुभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी सुषमाचार से अलग हैं। ये सच्चे सुषमाचार को नहीं जानते, सच्चे सुषमाचार का प्रचार नहीं करते, सच्चे सुषमाचार की शिक्षा नहीं देते। और मैं फिर से कह रहा हूं कि पिछली बार बहुत स्पष्टता से हमने सुषमाचार के बारे में देखा था और फिर आज हम दोहराएंगे जरूर उस बात को, क्योंकि बिना सुषमाचार के परमेश्वर का वचन अधूरा है। अब वो क्या कह रहे हैं, ना केवल ये लेकिन उनका जीवन क्या है, क्या हो गया उनके साथ। वो कह रहा है उनका विवेक मानो जलते लोहे से दागा गया है। अब विवेक कैसा हो गया, कॉन्शियस कैसा हो गया, दागी हो गया। और अगर जलते लोहे से दागा गया है तो क्या मतलब है, वो बेजान हो गया, जल गया, खत्म हो गया, बेजान हो गया है, ऐसी है। और मेरे प्रियो, कई बार संसार में, पूरे संसार में आज क्या हो रहा है, यही हो रहा है। दिखावा बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं, लोग आकर्षित हो रहे हैं, लोग अपने पैसा दे रहे हैं, अपना धन दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन क्या है। और ये क्या कर रहे थे उस समय, क्या कर रहे थे उस समय, ये एक काम कर रहे थे, लोगों क्या भ्रमित कर रहे थे। आगे चल के कहता है, वो कह रहा है तुम्हें विवाह करने की जरूरत नहीं, क्यों, ये बहुत सारी चीजें चल रही थी उस समय, थिस्सलुनीकी की कलीसिया में भी ये समस्या थी। अरे प्रभु तो आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, अब क्या करोगे तुम, कह रहा है विवाह करने से रोकेंगे, और भोजन की वस्तु से तुम ये खाना ये मत खाना, ये खाना ये मत खाना। हम पिछली बार तीसरे अध्याय में इसको बहुत स्पष्ट रूप से देख चुके हैं, ये सच है। व्यवस्था में भोजन महत्वपूर्ण था, व्यवस्था दी गई थी, विधियां दी गई थी, लेकिन बाद में हम जान के देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने उस सारी चीज को समान कर दिया और कहा भोजन बड़ी चीज नहीं है। और मरकुस उसके सातवें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो चीज जो बाहर से भीतर आती है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती, लेकिन जो मनुष्य के भीतर से निकलती है वो मनुष्य को अशुद्ध करती है। खाना पीना भी इसका मतलब ही नहीं, ओ खाना पीना अशुद्ध नहीं करता तो हम शराब भी पिए, नशा भी करें, ये करें, वो करें, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमें समझना है वो चीजें जो हमारे शरीर के लिए हमारे देह के लिए हानिकारक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा मंदिर है, जो इसको नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। और इसलिए हम उन सारी चीजों से कि बाहर की चीजें हमारे को हमें गंदा नहीं करी तो हम ले सकते, नहीं। परमेश्वर ने कुछ चीजों को ठहराया हुआ है, लेकिन ऐसी चीजें जो मनुष्य अपने आप बना करके अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने स्वाद को मिटाने के लिए, अपनी चाहनों को मिटाने के लिए ले लेता है, वो उसके लिए हानि का कारण होती है। सो यहां पर लेकिन विवाह क्यों, परमेश्वर ने विवाह ठहराया है, परमेश्वर की दृष्टि में विवाह जो है वो अच्छा है, लेकिन सही तरीके से परमेश्वर के वचन के अधिकार के दायरे में सही समय पे परमेश्वर को मानते हुए उसको पहला स्थान देते हुए किया जाए वो अच्छा है। तो ये लोग क्या थे, क्या करते हैं? और उस समय एक और बात थी, मैंने आपसे बताया था पिछली बार भी, उस समय रोमी शासन था और रोमी शासन ने लोगों को ये अनुमति दे रखी थी, वहां के शासन ने अनुमति दे रखी थी, कोई बात नहीं आप एक पत्ती रखिए, दो पत्ती रखिए, तीन पत्ती रखिए, कोई बात नहीं। और इसलिए उन्होंने विवाह को बहुत ही हल्का समझ लिया था। परमेश्वर का वचन विवाह को सिद्ध बनाता है, बताता है, विवाह को आशीषित बताता है और आशीषित बनाता है, विवाह को पवित्र ठहराता है और पवित्र बनाता है। और हमें इसे समझना चाहिए, मैं उस विवाह के विषय पर ज्यादा नहीं आगे बढ़ूंगा, लेकिन यह सच है बहुत सारे जवान बच्चे हैं और उनको अपने भविष्य में अपने जीवन साथी को चुनना है। बहुत सारे हमारे माता पिता हैं, उनको अपने बच्चों के लिए जीवन साथी को चुनना है। विवाह यद्यपि आशीष का कारण है, यद्यपि परमेश्वर ने विवाह के लिए विवाह ठहराया है, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि दी है, परमेश्वर ने समझ दिया है, परमेश्वर ने वचन के निर्देश दिए हैं, वचन की शिक्षा दी है, और उस वचन के दायरे में होकर के मुझको और आपको कदम बढ़ाना है, चाहे अपने बच्चे हों चाहे स्वयं हो, विवाह किस प्रकार से करना है। और वो ये कह रहा था अच्छा, इसीलिए कह रहा है कि जो ये शिक्षाएं हैं लोगों को भ्रमित करती हैं, इनसे इनसे खतरा उत्पन्न होता है, सावधान रहना, इनसे सावधान रहना। तो पहले पांच पद में वो इस बात को कह रहा, तब वो क्या कहता आगे चल के चार पद में, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो सब को अच्छा है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की, देखा पहला दिन अच्छा है, ये बनाया अच्छा है, ये बनाया अच्छा है, सब कुछ बनाने के बाद तब उसने कहा बहुत अच्छा है, दिन अच्छे हैं, परमेश्वर की सृष्टि अच्छी है, लेकिन परमेश्वर ने निर्देश दिए हैं, परमेश्वर ने शिक्षाएं दी हैं, परमेश्वर ने आज्ञा दी है, परमेश्वर अपने वचन में ठहराया है कैसे किस रीति से किस चीज का हम पालन करें और किस चीज को किस स्थान में रखें। वो कहता है कि बनाए वो सब अच्छा है और कुछ भी अस्वीकार करने के योग्य नहीं यदि उसको धन्यवाद के साथ खाया जा सके। यहां पर भोजन की बात हो रही है, अन्य वस्तु की बात नहीं हो रही, प्रसाद की बात नहीं हो रही, नशे की वस्तु की बात नहीं हो रही, भोजन की बात हो रही है। और इसलिए हमें सब कुछ को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। कई बार, कल भी हम कहीं इस बात कर रहे थे, कई बार मैं और अक्सर लोगों से बोलता हूं कि बाइबल में लिखा है नशा मत करना, लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि सिगरेट मत पीना। मैंने कहा परमेश्वर तुमसे ज्यादा होशियार है, अगर ये लिख देता परमेश्वर का वचन बीड़ी सिगरेट मत पीना तो फिर लोग पूछते भैया ये तो लिखा है लेकिन ब्रांड तो नहीं दिया है, कौन सी ब्रांड का मत पीना। मनुष्य की खोपड़ी जैसे चलती है परमेश्वर से ज्यादा दूर तक सोचता है, इसलिए बहाने बाजे नहीं चलेगी, हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझते हुए सही रीति से चल। और वो ये कह रहा है, तीसरा पद मैंने छोड़ दिया लेकिन तीसरा पद को सोचिए फिर से मैं पीछे जाऊंगा। कह रहा है विवाह को जिन्हें परमेश्वर इसलिए बनाए कि विश्वासी और सत्य को, विश्वासी और सत्य को पहचानने वाले धन्यवाद के साथ कहें, विश्वासी और सत्य को पहचानने वाले, दो चीज है, एक विश्वासी है प्रभु को पा लिया, विश्वास कर लिया, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन क्या वो दिन पर दिन सत्य को पहचानता चला जा रहा है, परमेश्वर के वचन को जानता चला जा रहा है, सत्य यीशु को जानता चला जा रहा है, यीशु को पहचानता चला जा रहा है, यीशु सत्य है, उसका वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, और इसलिए उसको जानना है। दिन प्रतिदिन यदि मैं और आप इस लालसा से जीवन व्यतीत करते हैं, इस जिज्ञासा से जीवन व्यतीत करते हैं, इस चाहना से जीवन व्यतीत करते हैं कि हम परमेश्वर आपके सत्य को और अधिक जाने, हमारे जीवन बदल जाएगा, हमारे जीने के तरीके बदल जाएंगे, हमारे जीवन के कार्य बदल जाएंगे, हमारे जीवन के सोच बदल जाएंगे। बहुत खोज खोज में रहते हैं हम, लेकिन कितना अधिक सत्य को खोजने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। वो ये कहता है, तब उसके बाद 6 पद से लेकर आगे चल करके वो कहता है, भाइयों को इन बातों का स्मरण दिला करके तू मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास की बातों और उस खरी शिक्षा द्वारा जिसे तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। अभक्ति और ऐसी कथा कहानियों से जो केवल बूढ़ियों के योग्य हैं कोई संबंध ना रख, परंतु भक्ति के लिए अपने आप को अनुशासित कर, क्योंकि शारीरिक साधना से केवल थोड़ा लाभ होता है परंतु भक्ति सब बातों में लाभदायक है, क्योंकि इस पर वर्तमान और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा निर्भर है। यह बात विश्वसनीय और हर प्रकार से ग्रहण योग्य है। दूसरा जो 6 पद से लेकर के 10 पद तक है, 10 पद मैं पढ़ूंगा, हम इसलिए परिश्रम और प्रयत्न करते हैं क्योंकि हमारी आशा जीवित परमेश्वर पर स्थिर है, जो सब मनुष्य का विशेषकर विश्वासी का उद्धार करता है। हमारे जीवन का अनुशासन धर्मी या धार्मिकता और सच्ची शिक्षा के लिए, डिसिप्लिन फॉर गॉडलीनेस एंड ट्रू टीचिंग, एक सच्ची शिक्षा और गॉडलीनेस या धर्मीपन के जीवन के लिए अनुशासन। जब तक मेरे और आपके जीवन में एक मसीह जीवन की जब हम बात करते हैं, कौन है मसीह जीवन, कैसे शुरू होता है, मसीह नाम परमेश्वर के द्वारा दिया गया है परमेश्वर के वचन में, और ये मसीह कौन है, यीशु के शिष्य सबसे पहले मसीह कहलाए, अर्थात एक मसीह वो है जिसने अपने जीवन को अनुशासित किया है, जिसने अपने जीवन को डिसिप्लिन किया है। अगर मेरा और आपका जीवन अनुशासित नहीं है, मेरे समय में, मेरे धन में, मेरे वचनों में, मेरी बातचीत में, मेरी बोल भाषा में, मेरे कार्य में, मेरे व्यवहार में, मेरे स्वभाव में, मेरे चरित्र में, अगर अनुशासित नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, वो कह रहा है बुढ़ियों के समान मत बनो, वो उदाहरण दे रहा है। अब ये नहीं कि सब बुढ़िया एक ही जैसे होते, लेकिन अधिकतर बुढ़िया बेचारे उनके पास काम नहीं है, क्या करेंगे, जब उनके पास काम नहीं दो जन बैठ करके गप्पी तो मारेंगे। और इसलिए अच्छा बुढ़ियों को काम ढूंढना चाहिए, और सबसे बड़ा काम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना और अपने नाती पोतों की सेवा करना, ये सबसे बड़ा काम यहां पर कह रहा है। लेकिन क्या कहता है, भाइयों इन बातों को स्मरण रख, दिला तू मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। कैसे ठहरेगा, तू मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। परमेश्वर ने जो सब कुछ बनाया वो अच्छा है। अगर परमेश्वर का सेवक अच्छा ठहरना तो क्या करना पड़ेगा तुझे, करेगा और विश्वास की बातों और उस खरी शिक्षा के द्वारा जिसे तू मानता आया है तेरा पालन पोषण क्या होता रहेगा, होगा नहीं, होता रहेगा, तू उसी में बना रहेगा, तू उसी में चलता रहेगा, तू उसी के जीवन में पाया जाएगा। यही अनुशासन है। वो कह रहा है अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास की बातों और खरी शिक्षा। बार बार देखिए दो चीज साथ आ रही हैं, विश्वास खरी शिक्षा, विश्वास खरी शिक्षा, विश्वास खरी शिक्षा। और तीमोथियुस को आप पढ़ेंगे तो तीमोथियुस बार बार वो विश्वास और खरी शिक्षा को साथ लेके चलता है। खरी शिक्षा के बिना विश्वास परिपक्व नहीं हो सकता, और इसलिए वो कह रहा है, अतः वो कहता है कि तेरा पालन, मतलब क्या पालन पोषण, फिजिकल शारीरिक पालन पोषण की बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो पालन पोषण की वो बात तो कर रहा है कि आत्मिक रीति से, किस रीति से मैं आत्मिक रीति से बढ़ाया जाऊंगा। कितनी बार हम अपने जीवन में बैठकर विचारते हैं, कौन सा दिन था जब आपने अपने अपने घर में, अपने स्थान पे, अपने ऑफिस में, अपनी मेज पर बैठ करके कहीं शांत से अपने जीवन को देख लिया, अवलोकन कर लिया, अपना पोस्टमार्टम कर लिया और ये विचार कर लिया आप कितना आत्मिक बढ़ रहे हैं, जीवन में बढ़ रहे हैं। हम लिस्ट बनाते हैं, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, करता हूँ, सुबह से उठ के शाम तक का लिस्ट बना के हम दे देते हैं, लेकिन क्या सचमुच वो आत्मिकता जो परमेश्वर वचन चाहता है, सोचने में, क्रियाओं में, कार्यकरण में, व्यवहार में, जहां कहीं प्रभु ने हमें रखा है, क्या हम आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं? क्या परमेश्वर का वो सत्य, परमेश्वर का वचन मेरा पालन पोषण कर रहा है? पालन पोषण का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं बच्चों को कैसे पाला पोषा जाता है, उनको पौष्टिक आहार देने के द्वारा, उनकी देखभाल करने द्वारा, उनकी बीमारी में उपचार करने द्वारा, उनकी सेवा करने द्वारा। कई बार पिछले दिनों में नेपाली चर्च में एक बच्चा बहुत ही इमैच्योर पैदा हुआ, 6 महीने का था। किस प्रकार से डॉक्टर लोगों ने उसकी 3 महीने तक केयर करी बाद में, लेकिन अब उस बच्चे को देखते हैं तो उसको बहुत हेल्दी देखते हैं और खुशी होती है, धन्यवाद था प्रभु के लोगों ने प्रार्थना की, जो कुछ कर सकते करा। क्या हुआ था उसमें? आशा नहीं थी जिस समय पहले बार देखा गया था, लेकिन उसके माता पिता ने, लोगों ने, कलीसिया ने, प्रार्थना के द्वारा, सेवा करने द्वारा, सहायता द्वारा, डॉक्टर ने, दवाई ने, उसका इस तरह से पालन पोषण किया, आज उस बच्चे को देख के सब लोग आनंदित होते हैं। ये व्यवहारिक रीति से मैं बोल रहा हूं। क्या लोग मेरे आत्मिक जीवन को देख करके आनंदित होते हैं? ये देख सकते हैं कि यहां इसका आत्मिक पालन पोषण हो रहा है, ये आत्मिकता में बढ़ रहा है, इसके अंदर भूख बढ़ रही है, इसके अंदर संगति की इच्छा बढ़ रही है, इसकी चाहना बढ़ रही है परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के कार्य साथ, इसकी बातचीत में, व्यवहार में, स्वभाव में, इच्छा में, सब कुछ में। आगे चलो क्या कहता है, क्योंकि शारीरिक साधना से केवल थोड़ा लाभ होता है। सुबह उसका एक्सरसाइज कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं है, दंड बटक बटक लगा लीजिए, हमारे भाई लोग लगते हैं वेट उठाने में लगे रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ कर लीजिए पर वो भक्ति जो परमेश्वर चाहता है वो ना हो। और वो ये कहता है कि हमें अपने जीवन को डिसिप्लिन करना है, इस तरह से अनुशासित करना है ताकि हमारे अंदर वो परमेश्वर की जो सच्चाई है, या परमेश्वर की जो शिक्षाएं हैं, या परमेश्वर की जो धार्मिकता है, वो धर्मी गॉडलीनेस, वो बलता चला जाए, ये सचमुच है, उसके लिए अपने अनुशासित करना है। मैं अक्सर जवान बच्चों को देखकर हमेशा कुछ ना कुछ बोलता हूं, यहां पर भी हमारे साथ बच्चे रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, अरे मैं बहुत व्यस्त हूं, ठीक है, अच्छी बात है। दो शब्द अंग्रेजी भाषा में बड़े खतरनाक है, एक बिजी, एक सॉरी। किसी को थप्पड़ मार दीजिए, सॉरी कह दीजिए, फिर मार दीजिए, फिर सॉरी कह दीजिए, फिर मार दीजिए, फिर सॉरी कह दीजिए। सॉरी बोलना बुरा नहीं है, लेकिन कई बार वो आदत बन जाती है। और बिजी, घर में खटिया में सो रहे हैं, बिजी हैं बहुत, वो भी तो बिजी है ना। और कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग हैं, क्यों उनका जीवन अनुशासित नहीं है, उन्होंने अपने जीवन के महत्व को नहीं समझा है, उन्होंने सुसमाचार के अर्थ को नहीं जाना है, उन्होंने परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में नहीं समझा है, उन्होंने नहीं जाना कि परमेश्वर उनके जीवन से क्या चाहता है, और वो इधर उधर की बातों में इसीलिए आसानी से फंस जाते हैं। वो कह रहा है तू अपने आप को जब तू ऐसा करेगा तो तू इन सारी चीजों से सावधान रहेगा जो आज फैलती चली जा रही है। क्यों लोग भटक जाते हैं? आज कितनी जगह में मीटिंगें होती हैं, पास्टर बनते चले, रोज गांव में पास्टर बन, और हर जगह पे तेल और पानी की और दुकान चलती चली जा रही, और जब उनको बताओ शिक्षा दो तो उनको बुरा लगता है। क्यों? इसलिए बुरा लगता है क्योंकि उसके माने तो उनकी आय हो रही है, वो बंद हो जाएगा, उनको परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा की जरूरत नहीं है, और उनके गुरु भी ऐसे हैं, उनके अगुए भी ऐसे हैं। मेरे प्रिय, सावधान रहिए, हम परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों क्या समझते हैं, परमेश्वर की कितना स्थान हम देते हैं, क्यों हमारा मन प्रार्थना भवन में नहीं आता लगता, क्यों हमारा मन बाइबल अध्ययन में नहीं लगता, क्यों हमारा मन परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में नहीं लगता, हमारे सामने हम बहुत बिजी हैं, क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को, अपने जीवन को उन बातों के लिए अनुशासित नहीं किया है जिसके अंदर, हमारे अंदर वो सच्चाई और सही शिक्षा और धार्मिकता उत्पन्न हो सके। हमारे पास हर चीज में कोई ना कोई बहाना रहता है। मेरे प्रियो, नौकरी करना जरूरी है, परिश्रम करना जरूरी है, अच्छा है, बाल बच्चों को देखना जरूरी है, अच्छा है, सारी चीजें, लेकिन परमेश्वर को तिरस्कारना यह सबसे भयंकर बात है, परमेश्वर को तिरस्कारना सबसे भयंकर बात है, जिस परमेश्वर के द्वारा। और वही कहता है, अरे परमेश्वर तो धन्यवाद के योग्य है, अगर परमेश्वर हमें स्वास्थ्य न दे, परमेश्वर हमें जीवन न दे, परमेश्वर हमारी देखभाल न करे, परमेश्वर हमारे पर अनुग्रह न करे, सबसे बड़ा तो अनुग्रह उसने पाप के दंड से बचा लिया, पाप से बचा लिया, हम तो नाश हो रहे थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, हमारे धर्म के कर्म हमें बचा नहीं सकते थे, हमारी योग्यता में नहीं बचा सकती थी, हमारी शिक्षाएं में नहीं बचा सकती थी, हमारा ज्ञान नहीं बचा सकता था, लेकिन धन्यवाद उस प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझ पर और आप पर दया करी और मुझे और आपको बचा लिया, उसका धन्यवाद। लेकिन उसके साथ प्रतिदिन जो वो मेरे और आपके लिए जीवन कहता है, वो कहता है इस शारीरिक साधना से कुछ नहीं, लेकिन भक्ति बातों में लाभदायक है, परंतु भक्ति सब बातों में लाभदायक है, क्योंकि इस वर्तमान और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा निर्भर है। क्या मतलब है? हम केवल वर्तमान को देखकर नहीं चल रहे, लेकिन हम भविष्य को देखकर चल रहे हैं। मानो लोग भविष्य को कैसे देखते हैं? भविष्य को इस तरह देखते हैं, मेरे पास मैंने चार पुरुषों के लिए मकान हो, बंगला हो, ये हो, वो हो, फलाना हो। घर बनाना पाप नहीं है, लेकिन अगर मेरा ध्यान है कि मेरे चार पुस्तक हो, हम तो बड़े थे, हम तो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो क्या हो गया? क्या हमारे बच्चे कंगाल हो गए? नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने उनके लिए किया। हमारा ध्यान क्या है, हमारी सोच क्या है? मैं कह रहा हूं घर बनाना, काम करना बुरा नहीं, लेकिन समझना है। हम पिछले हफ्ते किसी से बात कर रहे थे, और मैं जब उनसे हम बात करते परिवार में शाम को अपने घर में, तो हम कुछ समझाते, तो कह लें अंकल एक काम सबसे कठिन लगता है, और वो घर बनाने की योजना, बहुत अच्छी बात है, घर अच्छी बात है, कि कई बार कोशिश करते हैं हम प्रभु को कुछ दें, लेकिन जब हम देने की कोशिश करते हैं तभी ये खर्चा ये दिखाई दे जाता है। क्यों? क्या कारण है? हमने अपने जीवन को अनुशासित नहीं किया वचन में। हमारा दिमाग, हमारी सोच वचन में अनुशासित नहीं है, और जब वचन में अनुशासित नहीं है, इससे कई सारे बहानों में बंधी हुई है, और हमें साधन ना है। इसीलिए बार बार कहता है वो शिक्षा में, विश्वास में, शिक्षा में, विश्वास में, शिक्षा में, विश्वास में, शिक्षा में। कैसा विश्वास है? और तब आगे कहता है कि ये जो जीवन हमारा है वो आगे पर निर्भर है, आगे के आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा पर निर्भर है। कौन सी प्रतिज्ञा पर निर्भर है? वो प्रतिज्ञा कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और मुझे और आपको अपने साथ ले जाएगा, हम अनंत काल तक उसके साथ राज करेंगे। ये हमारे लिए प्रतिज्ञा है। हम उस पर निर्भर है, इस पृथ्वी की चीजों पर निर्भर नहीं है। अपनी चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, हाँ एक चीज के लिए जरूर, चार पीढ़ी पांच पीढ़ी तक हम प्रार्थना करते हैं। वो काय के लिए? हम अभी भी करते हैं अपने नाती पोतों के लिए, और हम ये प्रार्थना करते हैं जब तक प्रभु उनको जीवन दे, उनके लोगों को वचन के अनुसार हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वो बच सके, प्रभु के राज में शामिल हो सके। ये है प्रार्थना। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जीवनों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको आने वाले जीवन में, उनके जीवन में उद्धार का कार्य करें, ताकि उस प्रतिज्ञा में वे भी शामिल हो सके जो मुझे आपने शामिल किया है। ये प्रतिज्ञा इस पर हम करेंगे, पर और किसी चीज के लिए हम चिंता नहीं करेंगे। और यहां पर वो कहता है हम उन बातों पर जो प्रतिज्ञा पर निर्भर है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह का, मैं फिर आऊंगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये शिक्षा। और आज झूठे शिक्षक क्या कहते हैं? भैया 100 रुपए दो तुम्हें 1000 रुपए मिलेगा, ये कार मांगो तो वो कार मिल जाएगी, ये मकान मांगो तो 10 बंजी का मकान मिल जाएगा। झूठ है, धोखा है, छल है, फ्रेब है। और इन झूठे शिक्षकों के पीछे मत भागे, यूट्यूब में इनके पीछे मत भागे, मोबाइल में मत भागे इनके पीछे, ये आपको नाश कर देंगे। सावधान रहिए, अनुशासित कीजिए अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में, परमेश्वर की सच्चाइयों में। ये उस समय से चालू हो गया था जो आज भी है, और दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा, और मुझे और आपको सावधान रहना है। और मेरे पियो कहता है वहां, और तब वो कहता है 10वें पद में, हम इसीलिए परिश्रम और प्रत करते, दो चीजें, इसलिए हम अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए क्या कर रहे हैं? परिश्रम कर रहे हैं और प्रत कर रहे हैं, कि हमारी आशा जीवित परमेश्वर पर स्थिर है, जो सब मनुष्य का, विशेषकर विश्वासी को उद्धार करता। सब मनुष्य का क्या मतलब है? उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, सबसे प्रेम किया, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो को उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो पर उस पर विश्वास करेगा उसका उद्धारकर्ता बनेगा, लेकिन जिन्होंने उसको विश्वास करी, जो विश्वासी होगा उनका तो उद्धारकर्ता है। ये सेल्वेशन, ये उद्धार परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर की आशीष है, उद्धार, और जो है मनुष्य अपने आप से प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, ये बाइबल की सबसे बड़ी सच्चाई है। संसार में अगर आपको मोक्ष चाहिए, अगर आपको उद्धार चाहिए, तो आपको लोग कहेंगे ये कर लो, वो कर लो, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए मोक्ष का मैंने कार्य पूरा कर दिया है, मैंने तुम्हारे लिए उद्धार की योजना बना पूरी कर दी है, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास आओ मुझ पर विश्वास करो, प्रभु यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मुझ पर विश्वास करो और मुझसे तुम जीवन पाओगे, मुझसे तुम उद्धार पाओगे, मुझसे तुम छुटकारा पाओगे। तुम्हें यहां जाने से, वहां जाने से, ये करने से, वो करने से कुछ नहीं होगा। संसार भेजता है, प्रभु बुलाता है। और इसीलिए प्रभु कहता है हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। मेरे प्रियो, विश्वासियों का वो यीशु मसीह उद्धार करता है। यदि यीशु मसीह आपका उद्धार करता बन चुका है, यदि आपने उसको अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार कर लिया है, यदि आपने उसे पापों की क्षमा को मान लिया है, यदि आपने अपने जीवन को उसके हाथों में दे दिया है, तो क्या आपका जीवन उस अनुशासन में जो उसकी धार्मिकता को खोज में है, उसके सत्य शिक्षा को वचन की खोज में, क्या उस अनुशासन में आपका जीवन आया है या आप चाहते हैं? इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, इसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है, परिश्रम करने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, तब परमेश्वर ऐसा करेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हें खोला जाएगा। क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं? प्रभु मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं आपकी उस धार्मिकता को, आपके उस सत्य शिक्षाओं को, उस वचन को पाने के लिए मैं परिश्रम कर सकूं। मेरे को ऐसा मन दे दीजिए, ऐसी शक्ति दे दीजिए, ऐसी इच्छा दे दीजिए, ये मुझे कर दीजिए, मेरे विश्वास को थाम लीजिए, मेरे विश्वास को बढ़ा दीजिए। मैं आपके साथ जीना चाहता हूं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि संसार तो नाश हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, 10 साल 20 साल 30 साल के एक दिन बाद इस संसार से जाना पड़ेगा, जो कुछ है सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन मैं आपके साथ अनंत काल तक रहूंगा। क्यों ना मैं इस संसार में रह करके इसमें अपने आप को ऐसे तैयार करूं कि मैं आपके साथ अनंत काल तक के लिए रह सकूं। यह चाहना है क्या? यह जीवन, यह अभिलाषा है क्या? यह अनुशासन है। वो कहता है कि सच में विशेषकर, तब 12 पद से लेकर के 16 पद तक तीसरा खंड है, डिस्क्रिप्शन को देता है किस प्रकार के, वो जो सच्चा सुसमाचार है, जो सच्चा सुसमाचार किस प्रकार से जीवन को बनाता है उसका विवरण वो देता है। विवरण है, कह रहा है कोई तेरी अवस्था, कोई, क्योंकि तिमोथियुस युवक था, जवानों का उसको जिम्मेदारी दी गई थी, पास्टर की जिम्मेदारी उसको दी गई थी। वो कह रहा है कोई तेरी जवान को तुच्छ ना समझे, परंतु वचन, ये वचन उस बात के लिए कह रहा है जो वो बोल रहा है, प्रचार कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, बातचीत कर रहा है। वचन, ये वचन सुसमाचार की बात नहीं है, ये वचन उसके व्यवहार की बात है, उसके कार्य की बात है, उसके जीवन की बात है, जो उसके मुख से निकल रहे हैं। तू जो बोल रहा है, तू जो बातचीत करता है, तू जो सुसमाचार सुनाता है, लोगों से व्यवहार करता है, वो कैसा होना चाहिए? मैं अक्सर, माफ करिएगा, बहनों को एक सलाह देता हूं, भाई भाइयों को भी सलाह है। हम तो पिछली बार भी देखते थे, शालीनता से जीवन व्यतीत करना चाहिए, बक बक करने वाले नहीं होना चाहिए। और कुछ लोगों की आदत होती है, बहुत बोलते हैं, हाई पर रहते हैं, वो अच्छा नहीं है। प्रार्थना कीजिए अपने लिए। मैंने कई बच्चों को, और मैं प्रभु धन्यवाद हूं, बच्चों ने सीखा भी है, भाई लोगों भी, हम क्या बोलते हैं लोगों के साथ, कैसे बात करते हैं, क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। प्रभु मैं आने के बाद भी तब भी अभी तभी करके हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे का क्या सम्मान करते हैं, हमारे मुख से कैसे शब्द निकलते हैं, ये वचन जो मुंह से शब्द निकल रहे हैं कैसे होने चाहिए हमारे। अगर प्रभु हमारा मन बदलता है तो हमारी जीभ भी बदलता है, प्रभु हमारा स्वभाव बदलता है तो हमारी जीभ भी बदलता है, हमारी भाषा भी बदलता है, हमारी बोली भी बदलता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अनुशासन करना पड़ता है। तब ये कहता है वचन, व्यवहार, प्रेम, विश्वास, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बजा। क्या मतलब है? तेरा व्यवहार कैसा हो? पिछली बार भी हम यहां पर देख रहे थे, जब तीसरे अध्याय के और हमने 15 पद में, यदि मेरे आने में विलंब हो जाए तो तुझे मालूम रहे कि परमेश्वर की कलीसिया, जो जीवित कलीसिया, जो परमेश्वर की कलीसिया है और सत्य का स्तंभ आधार है, तेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए इस कलीसिया में, इस परिवार में, एक विश्वासी परिवार में, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मेरी बोलचाल, मेरा उठना बैठना, मेरे कार्य, मेरी उपस्थिति, मेरे लोगों की चिंता। हम बहुत व्यस्त हैं, माफ कीजिएगा, 2 संडे से मैं यहाँ पर खड़ो के आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहा हूँ। बहन रिंकी ऐसी स्थिति में है, कितने लोगों मौका मिला कि जाके विजिट कर सके, हम व्यस्त हैं। अगर आप उस स्थान पे होते तो आप क्या सोचते, और जब आपको कोई विजिट ना करता तो आप क्या सोचते? ये चुनौती है। बहन आज हमारे बीच में है, बहन महिमा, कितने दिन तक मैंने यहां से आप लोगों से कहा, हम इतने व्यस्त हैं, हमारा व्यवहार, हमारा समय क्या अनुशासन है। घर में बैठकर प्रार्थना करना आसान है, लेकिन किसी बीमार को विजिट कर लेना, उनकी चिंता कर लेना, अपने टाइम को इस प्रकार से एडजस्ट करना, ठीक है चाहे कुछ भी, मैं समय निकाल कर कुछ करने की तैयार हूँ। मेरे प्रियो, कलीसिया एक परिवार है, वही कह रहा है कि तेरा व्यवहार, वही चीज यहां पर कह रहा है, फिर से कह रहा है तुझे मालूम चाहिए तेरा व्यवहार कैसा हो, तेरी भाषा, तेरा जीवन, तेरा विश्वास। वो कह रहा है विश्वास, क्या विश्वास, मतलब विश्वास 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 बोलने से नहीं, या विश्वास नाम से नहीं, तेरे प्रतिदिन के जीवन के जो निर्णय है वो विश्वास उसमें दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। परमेश्वर उपाय करेगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं छल नहीं करूंगा, मैं धोखा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं अपने नाम को नहीं करूंगा, मैं संसार से समझौते नहीं करूंगा, मेरा विश्वास चाहे कुछ भी हो। कितनी बार हम वो जीवन में निर्णय लेते हैं, वो जीवन में कार्य करते हैं जिनमें विश्वास नहीं दिखाई देता। विश्वासी तो है लेकिन विश्वास दिखाई नहीं देता, और हमेशा हमारे कार्य दर्शाते हैं कि हम कैसे विश्वासी हैं। बात को सावधान रहना है। पवित्रता, वो क्या कह रहा है, किसके लिए आदर्श बन जा, किसके लिए आदर्श बन जा, पहले घर के लिए बोला है, परिवार के लिए, विश्वासियों के लिए, बाहर के लिए बाद में, ताकि जब तेरा व्यवहार अच्छा रहे, तेरा विश्वास अच्छा रहे, तेरा वचन सही रहे, तेरा प्रेम अच्छा रहे, तेरी पवित्रता दिखाई दे, और जब तू इनके सामने एक आदर्श रहेगा तो जो कुछ उनको तू सिखाएगा वो तो लोग देख रहे हैं और सीखने पाएंगे। युवा पास्टर है, जवान पास्टर है, उसको सीखने की जरूरत है। कई बार जवानों को सीखना बड़ा मुश्किल होता है, सिखाना भी मुश्किल होता है। हम भी उसी दौरे में से गुजर के गए हैं, आज तो खोपड़ी के बाल चले गए उसी दौरे में। और जब कोई बड़ा सिखाता था बोलता था, अरे क्या बोलते हैं हमें, हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत जानते हैं, बड़ा मुश्किल होता था। मेरे प्रिय साधारण ननान, ये किसको सलाह दे रहा है, ये युवा अगुए को सलाह दे रहा है, और समझना है हमें, जानना है। मेरे विश्वासी भाई बहनों, हम जो कलीसिया में हैं, मेरा और आपका जो न केवल अगुओं के लिए है लेकिन कलीसिया के विश्वासी के लिए भी, किस प्रकार से हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है, कैसे, वो विवरण इस बात को दे रहा है, किस रीति, क्यों, ये क्या करेगा, ये चीजें क्या करेगी, ये चीजें सच्चे सुषमाचार को मेरे जीवन में, हमारे जीवन में प्रदर्शित करेंगी। ये चीजें मेरे और आपके जीवन के द्वारा सच्चे सुषमाचार को न केवल प्रदर्शित करेंगी, प्रकट करेंगी और उसकी व्याख्या करेंगी। जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करेंगे तो लोग हमारे जीवन प्रेम देखने पाएंगे, जब विश्वास के बारे में बात करेंगे तो लोग विश्वास देखने पाएंगे, जब पवित्रता के बारे में बात करेंगे तो पवित्रता देखने पाएंगे, व्यवहार के बारे में बात करेंगे तो व्यवहार देखने पाएंगे। सुषमाचार की व्याख्या, सुषमाचार शब्द नहीं है, गॉस्पल इज नॉट ओनली वर्ड्स बट लाइफ, जीवन है, और वो मुझे और आपको अपनाना है, वो मुझे और आपको अपनाना है, उसके लिए चाहना रखनी है, उसके लिए प्रार्थना रखनी करनी है, उसके पीछे करना है। और तब आगे चलकर कहता है, आगे बढ़ करके, अपने उस वरदान को जो तुझ में है और जो तुझे प्राचीनों के हाथ रखते समय नबुवत द्वारा प्राप्त हुआ, निश्चिंत ना रहे। जो तुझे वरदान दिया गया था, मिला था, उसको विशेष से शिक्षा का और प्रचार का वरदान मिला, वो कहता है ठीक है, सेवकों ने तेरे लिए प्रार्थना करी है, तेरे पर हाथ रखे हैं, परमेश्वर की तूने आशीष को पाया है, और परमेश्वर ये उस तरह का नहीं, वो ठीक है तुम आओ, तुम में ये बहुत बार इस समय चलता है, लोग चलते हैं, तुम्हें वरदान चाहिए आओ हम देंगे, ये वरदान ऐसे नहीं बढ़ता। लेकिन यहां पर जो स्थिति दूसरे कह रहा है, उस समय कलीसिया की स्थापना होती, नई कलीसिया बनी थी, प्रभु नए लोगों को तैयार कर रहा था, और उसके साथ ही कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है, वो सावधान कह रहा है कि तुझे जो कुछ भी तेरे पास परमेश्वर ने दिया है उसके प्रति तुझे गंभीर होना है, गंभीर होना है। मेरे प्रियो, जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, वरदान दिए हैं, गुण दिए हैं, अनुभव दिया है, शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, जो उसके लिए गंभीर होना है, घमंडी नहीं होना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। लेकिन इसलिए, पर उसके लिए क्या करना, पांच बातें आगे चल के वो कहता है, पांच बातें आगे चल के कहता है 15 पद में, उसी चीज को समझाते हैं। इसलिए इनके लिए प्रत्यशील रहे और इन पर अपना पूरा मन लगा, जिससे तेरी प्रगति सब पर प्रकट हो, प्रगति उन्नति जो बढ़ रहा है, केवल पैदा हो गया उतना ही काफी नहीं है, पैदा होके उम्र के साथ साथ तेरी देह बढ़ रही है, आयु बढ़ रही है, तेरा सब कुछ बढ़ रहा है। अब तू 3 साल का बालक नहीं है, अगर तू 10 साल का हो गया तो तेरी बुद्धि भी बढ़ गई, तेरा डील डॉल भी बढ़ गया, तेरा कार्य भी बढ़ गया, तेरा व्यवहार बढ़ गया, 3 साल का नहीं है। आप 10 साल पहले विश्वास में कैसे थे, दस साल पहले वचन में कैसे थे, दस साल पहले भी बाइबल के पदों को आप इधर उधर ढूंढते थे, आज भी वैसे ही ढूंढ रहे हैं बाइबल की पुस्तकों को, कहां पर है नहीं मालूम। और मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ता है, माफ कीजिएगा, लोग 10 साल में कई बार अपने कपड़े बदल चुके होंगे, लेकिन 10 साल क्या 20 साल हो गए बाइबल नहीं बदली कभी। एक व्यक्ति जो बाइबल से प्यार करता है वो बाइबल को इतना पढ़ेगा, इतना पढ़ेगा, समय निकाल लेगा। बहुत सारे लोगों को देखा हमने, माफ कीजिएगा, क्षमा मांगते मैं कह रहा हूं, ये प्रभु का अनुग्रह था, पर प्रभु का अनुग्रह। कल हम जब एंगेजमेंट में थे वहां एक बच्ची से मुलाकात हुई, मैं तो बच्ची से पहले मिला, वो प्रभु में आ गई, लेकिन उसके पिताजी मेरे साथ एचएल में थे, पिताजी उसके एचएल में थे, मिस्टर रामपाल, बाद में मुझे याद आया, मैं सोचने लगा था मुझे याद आया। अतः वो बच्चे कहने कि मेरे पिताजी आपको बहुत याद करते हैं, और उन्होंने, मैंने कहा ठीक है आप किसी दिन चर्च में उनको लेकर आइए, उन्होंने आने के लिए कहा, और तब मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे तोड़ बाधा, तो कहने हाँ, मुझे अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, मैंने प्रभु धन्यवाद हो आपका, कहने लगे हाँ जब वो आपको याद करते हैं और आपको अच्छी तरह से याद, उनको याद है कि जब आप चर्च में सॉरी एचएल में थे उस समय वो कहते थे, कहते थे कि तो उसी समय इस तरह से हो गया था कि आज वो ये करेगा। मुझे इनकरेजमेंट मिला, मैं प्रभु धन्यवाद हूँ, अन्य जाति की साक्षी अगर इस तरह से मेरे लिए आई, मैं प्रभु धन्यवाद। मैं निर्बल रहा, असफल हुआ, गलती करी, पाप में गिरा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज उस आयु में होकर के वो इस बात को सोच सकते हैं, मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ, मेरे प्रभु मेरे लिए आनंद की बात है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, संसार सब बेकार है, ये संसार आपको लुभाएगा, संसार को आपको जकड़ेगा, पीछे दौड़ाएगा, लेकिन कुछ नहीं देगा। इसलिए आपके जीवन में इन सारी चीज़ों की जो पौलुस तिमोथियुस को कहते हुए दे रहा, निर्देश दे रहा है, वो कह रहा है प्रयत्नशील रहे, पूरा मन लगा, सब पर प्रकट हो जा तेरी प्रगति, और वो कह रहा है अपने ऊपर और अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे, इन बातों पर स्थिर रहे। पांच चीजें, प्रतिष्ठित रहे, पूरा मन लगा, प्रकट हो जाए, ध्यान दे, स्थिर रहे, ये पांच बातें मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए। कब होगा? जब हमारे अंदर चाहना उत्पन्न होगी। कब होगा? जब हम इसके लिए प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे, प्रतिष्ठित होंगे। कब होगा? जब हम इसके लिए अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, अपने आप को अनुशासित करेंगे। ये कब होगा? जब हम इसके लिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह समर्पित करके विश्वास में रहेंगे। मेरे प्रियो, क्यों पौलुस तिमोथियुस को शिक्षा दे रहा है? तिमोथियुस सावधान रहे, ये झूठे शिक्षक बहकाएंगे, भरमाएंगे, झूठ वचन को तोड़े मड़ोंगे, सुसमाचार को तोड़े मड़ोंगे। आगे चल के और भी बात करता है वो, पांचवें अध्याय में हर एक ग्रुप को छूता है, हर एक ग्रुप को लेता है वो, महिलाओं को, बहनों को, जवानों को, सबको, कि सब लोगों को सावधान कर रहा है। अब यहां उसने सेवक को सावधान करा, अब आगे चल के लोगों को सावधान करेगा। कैसे सावधान रहना है इस अंतिम समय में? जब उस समय से था तो अब तो प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, और जैसे हमने मत्ती उसके 24 अध्याय में पढ़ा था कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा, क्या क्या चीज हो जाएंगी, जो कुछ भी आज हम घटनाएं देखते चले जा रहे हैं, आप बार बार हम टीवी पे पेपर में लोगों को बोलते दिखते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, अरे इस समय संसार का अंत हो जाएगा, इस समय संसार का, किसी ने कहा 2060 में अंत हो जाएगा, किसी ने कहा 2050 में अंत हो जाएगा, हम नहीं जानते कब अंत होगा, 2060 में या 10 साल बाद या 20 साल पर या 1000 साल बाद, हम नहीं जानते, लेकिन मैं यह जानता हूं, मुझे और आपको जानता है कि मेरा और आपके लिए शायद ये दिन आज आखिरी दिन होगा। हम योजना तो बनाएंगे जैसे हमें 10 साल जीना है, लेकिन जिएंगे इस तरह से कि शायद ये आज हमारा आखिरी दिन है। योजना बनाना पाप नहीं है, लेकिन जीवन को संभाल के चलना कि अगर आज आंख बंद हो जाए तो हम उसके सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं, और उस स्थान पे पहुंचे वो जिसकी प्रतिज्ञा उसने दी है, वो अनंत राज में उसके, कहता है वो प्रतिज्ञा उसने दी है, वो स्थाई प्रतिज्ञा है, अनंत काल के स्थाई की प्रतिज्ञा, और इसलिए इन झूठी शिक्षाओं से सावधान रहो जो तुम्हें भ्रमित करेंगी, तुम्हारे दिमाग को खराब करेंगी, तुम्हें विश्वास से भटकाएंगी, तुम्हारे पर आक्रमण करेंगी, तुम्हें अपने फंदे में फंसाएंगी और तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इनके पीछे मत भागो, संसार के पीछे मत भागो, उन सारे ड्रामा दिखाने वालों के पीछे मत भागो। मेरे प्रियो, सच्चे वचन को थामो, सच्चे सुसमाचार को थामो, उसको अपने मन में लो, उसको अपने जीवन में, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करो, प्रत करो, प्रयास करो, अनुशासित हो, और तब तुम ऐसे करके उस जिज्ञासा को रखो, तब परमेश्वर तुम्हारे इसको संभालेगा और तुम परमेश्वर का आदर पाओगे, और तब ये तुम्हारे जीवन में स्त्री को कहा, तो वो कह रहा है क्योंकि ऐसा करने से तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा, न तुझे उद्धार मिलेगा केवल लेकिन उसके द्वारा दूसरे लोग उद्धार पाएंगे, न तू आशीषित होगा लेकिन तेरा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। मेरे प्रियो, मसीह जीवन केवल स्वयं की आशीष को प्राप्त करके चलने वाला नहीं है, और वो आशीषों की जब मैं बात करता हूं तो केवल रोटी कपड़े मकान की बात नहीं है, पर मैं देता है। अगर एक मेहनती आदमी है, परिश्रमी आदमी है, ईमानदार आदमी है, लालची नहीं है, सुस्त नहीं है, परमेश्वर उसको देता है, परमेश्वर उसको इस तरह से रखता है, उसका घर परिवार दूसरों समाज के लिए एक गवाही का कारण बन जाता है। लेकिन जब हम इस बात को देखते हैं परमेश्वर के वचन को, तो वो हमारा जीवन, मैं बार बार बोलता हूं, अगर हमारा जीवन स्वयं सही नहीं है किसी भी रीति से, लोग हमारे पड़ोसी क्या देखते हैं, हम कभी दूसरे के उद्धार का कारण नहीं बन सकते, हम अपने रिश्तेदारों के लिए उद्धार का कारण नहीं बन सकते। क्या आपके जीवन के द्वारा कोई एक परिवार का आपका प्रभु में उद्धार पा लिया? अगर नहीं पाया तो क्यों नहीं पाया? किन बातों को हम कह सकते हैं नहीं हम इससे अलग रहेंगे? हमारे जब बच्चों की शादी होती है, माफ कीजिए मैं बोल रहा हूं, क्या हम कदम बढ़ाते हैं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, चाहे कितने भी हमें बाध्यता हो जाए, हम दूसरों सामने एक गवाही को रखेंगे, तो स्वयं और दूसरे के लिए उद्धार का कारण होगा। क्या मेरे और आपके अंदर ये भूख है, प्यास है? प्रभु कोई तो हो जो उद्धार पाले हमारे जीवन के द्वारा, कोई तो हो मेरे द्वारा। मेरे प्रियो, एक मसीह विश्वासी को प्रयत्नशील रहना चाहिए कि उसके द्वारा कोई ना कोई उद्धार को प्राप्त कर ले। सो पहला तीमोथियुस 4 पौलुस तीमोथियुस को सावधान कर रहा है, वार्न कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, उसको कह रहा है कि उस खतरे से बचा रहे, डेंजर से सावधान रहे, बचा रहे, अपने जीवन को डिसिप्लिन करें, और अब उस डिस्क्रिप्शन को ध्यान दे जो तेरे जीवन के बारे में है, उसको ध्यान दे। काश प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। हम क्या कहेंगे आज प्रभु से? क्या कहेंगे? प्रभु मेरे जीवन में आप ही कार्य करिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, पर मैं उस इच्छा को लेना चाहता हूँ ताकि आपका सुसमाचार मेरे जीवन के द्वारा प्रदर्शित हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे।